Good evening, listeners, to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from our listeners on any queries that you may have on mutual fund and related matters. To connect with us, you can call us on 2331-4444-2342-1050 and 2331-0464. And of course, do prefix the code 011. Your anchors for today, Sonu Sood and myself, Sarabjit Kaur.
धन्यवाद सरबजीत. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाते हैं. श्रोताओं, आज रविवार है और हम आपके फोन कॉल्स भी सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे. म्यूचुअल फंड्स और इससे जुड़े मुद्दों पर कोई भी जानकारी आप आज के कार्यक्रम में प्राप्त कर सकते हैं. आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, 2331-4444-2342-1050 और 2331-04-64. दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए म्यूचुअल फंड्स विशेषज्ञ आकार रस्तोगी हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं. आकार जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
जी धन्यवाद.
और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं सरबजीत कौर.
यस ऑफ कोर्स सोनू, राइट अवे. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस हाइक इन टैरिफ्स फ्रॉम 10% to 15% ऑन ऑल कंट्रीज. ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज ऑलमोस्ट 6% लास्ट वीक एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स टू फोकस ऑन इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स एंड ग्लोबल ट्रिगर्स फॉर क्यूज नेक्स्ट वीक.
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों के लिए टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की. कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में पिछले सप्ताह लगभग 6% का उछाल आया और घरेलू निवेशकों की निगाह अगले सप्ताह भारतीय आर्थिक आंकड़ों, टैरिफ से संबंधित घटनाक्रम और वैश्विक संकेतों पर टिकी होगी.
And Sonu, before we go any further in the program, may we just once again remind our listeners, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और सरबजीत, अब हम आज के पहले कॉलर को इनवाइट करते हैं कार्यक्रम में. मुंबई से उद्धव है हमारे साथ, आपका स्वागत है. सवाल पूछिए उद्धव जी.
जी मैम, कुछ महीनों पहले तक ना मैम, एक म्यूचुअल फंड का कंसोलिडेट अकाउंट स्टेटमेंट CAS आता था, बट लास्ट 5-6 महीने से वो बंद हो गया है. तो इसके लिए मैं इसको कैसे रिस्टार्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा मैम?
आकार जी,
आप इसको कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं. आप RTA की वेबसाइट पे जाइए, आप CAMS की वेबसाइट पे जाइए, वहां से आप एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपके पैन नंबर और ईमेल एड्रेस के बेसिस पे वो आपको एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट वहां से ईमेल कर दिया जाएगा.
और अब आज की पहली बड़ी खबर लेते हैं सरब जी.
जी, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज रेज्ड द ग्लोबल टैरिफ्स फ्रॉम 10% to 15% after a big setback in the Supreme Court. In a 6-3 decision, the court said the International Emergency Economic Powers Act, IEEPA, does not give a president the power to introduce broad, cross-the-board tariffs on imports. The judgment could open the door to refund claims potentially worth tens of billions of dollars.
और अब अगली खबर की ओर चलते हैं. विदेशी निवेशकों ने फरवरी में अब तक 16,912 करोड़ रुपए के भारतीय शेयरों की शुद्ध खरीदारी की है. डिपॉजिटरीज आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FPI ने भारतीय ऋण बाजारों में भी 3,605 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे आलोच्य अवधि में भारतीय पूंजी बाजार में उनका शुद्ध निवेश 31,742 करोड़ रुपए दर्ज हुआ. 2026 की शुरुआत कमजोर रहने के बाद इस महीने खरीदारी बाजार में लौट आई, मतलब माफ कीजिएगा, गौरतलब है कि फरवरी में इस भारी निवेश से पहले जनवरी में एफपीआई ने 35,962 करोड़ रुपए बाजार से निकाले थे और दिसंबर में ये निकासी 22,611 करोड़ रुपए थी। क्या कहेंगे आप, बाजार ने जिस तरह की एक पॉजिटिव इनफ्लोज दिखाई दे रहे हैं, इससे आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड बाजार, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है?
देखिए, बाजार में जब भी ऐसे बीच बीच में मूवमेंट्स होती है तो एक जो आम निवेशक है उनको बहुत ज्यादा इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए या फिर उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा क्या होगा। वो सब एक ट्रेडर के लिए चीजें जो होती है, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो एक रिटेल इन्वेस्टर है, जो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, उसको जो भी है जो मार्केट की नुएंसेज है ये सब एक फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। इनफैक्ट इसी वजह से जो है वो एक फंड मैनेजर को एक अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में जो है रिटर्न्स के थ्रू देते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर को एक अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए, असेट एलोकेशन देखे, गोल के हिसाब से एक अच्छा फंड चुने और बाकी सब चीजें एक फंड मैनेजर पे छोड़ दे।
और सौरव नंदी जी हैदराबाद से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सौरव जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा।
गुड इवनिंग।
एक्चुअली आईटी इज नॉट डूइंग सो वेल, सो आई हैव गॉट ए क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वर्सेस द एआई। I just want to know that the present day IT companies, at some point of time, won't they become more inclined to AI? That is one. And what are the present AI stocks, if they are stocks or mutual funds, if they are available in the market at present? Thank you.
Specifically for the IT sector, for your investments in IT, yeah, definitely I agree that the IT sector is currently not doing very well, and it has been hit by the AI, and everyone is having that fear that what will happen to the IT sector, which largely depends on the services provided, because probably AI might take over it. But at the same time, I would say that it is very important for you to look at it in the sense that what portion of your total portfolio does IT make? I mean, is it completely, or is it just like 17%, 18%, 20%, or 15%? Because even if you are investing in a diversified mutual fund, your whole money would not be going there. And if you're invested in multiple schemes, it would be better to have a complete holistic view that what part of your money is going into in the IT sector actually. And even then, I would say, this happens with each and every sector. Like when you look at any particular sector, challenges comes. With IT, this is AI, but there have been other sectors, infra, pharma, with which different types of challenges come and go. So that's the reason why we generally say that one should never be invested completely in one sector alone, and rather diversify, because sectors move in cycles.
और अब अगले कॉलर दिल्ली से शोभित हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोभित जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें।
या गुड इवनिंग मार्केट मंत्र। माय क्वेश्चन टू द एक्सपर्ट इज अबाउट, माय वाइफ हैज अ गुड कॉर्पस इन पीएफ एंड शी वांट्स टू मूव इट टू द म्यूचुअल फंड। वुड यू सजेस्ट दिस टू हर दैट शी शुड मूव टू म्यूचुअल फंड, taking out the money from the PF account? Thank you.
Shobhit ji, this completely depends on the complete portfolio asset allocation and the goal and the purpose for which you are saving that money. So ideally, a complete portfolio should have both asset classes, equity for growth and stability. For stability, you should have fixed income. If you already have a PPF account balance, so you are getting 7.1% guaranteed return, which is completely tax free. So, for to have that fixed income portion in your portfolio, some balance already in the PPF account is wonderful. At the same time, yes, it does have some liquidity limitations. But as you said that, you know, it is about to mature. I believe one can extend the PPF account in the block of 5 years. And if you extend it without any further deposits, you have that flexibility to withdraw once every year. So I would say first, it would be very important for her to, you know, assess when that money would be needed. If it's her long-term money, it's not required for, next 5-7 years, then definitely it should be in equity. But at the same time, look at the complete portfolio. What's the portion which is already there in the equity? And maybe maintain a 70-30 allocation kind of a thing.
Meanwhile, another caller has connected with us, Ramesh from Hyderabad. Ramesh ji, apna sawal poochhe.
Good evening. I had invested in Tata Digital Fund 4 years back for 3 years through SIP. Last year, my overall profit was around 35%. Now it has come down to 5%. So what should I do?
As we have been talking just a few calls back, so Tata Digital Fund is also completely focused into the IT sector. And this sector particularly is not doing very well right now. But I would say, I mean, it has been just 4 years. And this is a time when you should not be panicking and, you know, stay invested for longer term. But at the same time, ensure that this is not the only fund, which I hope that this is not the only fund in your portfolio. And this is just a part of the complete. You know, your allocation is a small part of the complete allocation. And I mean, for these kind of situations only, it is, you know, generally said that one should be invested in a diversified portfolio.
Hyderabad se chale Jaipur, jahan se Jitender hai hamare agle caller, aapka bahut bahut swagat, sawal puche.
Sir, jaise kya hai ki mera ek hi SIP jata hai Mahindra Manu Life Multicap mein, lekin मेरी वाइफ जो है 6000 रुपया हर एक मंथ जमा करना चाहती है लंबे समय के लिए, लेकिन हम लोग क्या इमोशनल कई एएमसी से भी लमसम जमा किए हुए हैं, किसी में एसआईपी नहीं, सिर्फ मल्टी कैप में है और बैंक ऑफ बड़ौदा बीएनपी में भी है, लेकिन उसका बहुत रेट और उसका बहुत कम है रिटर्न, 2-3-4% का अंतर रहता है। तो कृपया एक दो हमको फंड बता दीजिए कि जिसमें हम लंबे समय के लिए, मल्टी कैप चल रहा है।
देखिए, आपका ऑलरेडी एक मल्टी कैप फंड में निवेश है, तो सारा पैसा तो मैं नहीं कहूंगा कि एक ही फंड में लगाए। आप मल्टी कैप के साथ और कोई एक फ्लेक्सी कैप फंड भी देख सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा मल्टी कैप फंड का चुनाव भी कर सकते हैं। दो मल्टी कैप फंड में लगाने में पैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि जो मल्टी कैप फंड है, इनमें पैसा आपका 50% बाय मैंडेट मिड और स्मॉल कैप में चले जाते हैं, क्योंकि इनका मैंडेट होता है कि जो 25% है वो तीनों में लगे, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। सो क्योंकि 50% आपका मिड और स्मॉल में अपने आप ही होता है, तो ये फंड्स थोड़े से ज्यादा एक अग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं कंपैरेटिवली। वहीं पे अगर आप एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली कंजर्वेटिव स्टांस वाला एक डाइवर्सिफाइड फंड देखना चाहते हैं, तो वो फ्लेक्सी कैप रहेगा, तो आप एक फ्लेक्सी कैप जोड़ सकते हैं साथ में अपने उस फंड के।
और नोएडा से देवकांत जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देवकांत जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
देवकांत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी जी जी।
हाँ, प्लीज अपना सवाल पूछिए।
हाँ जी, नमस्कार जी।
जी नमस्कार, सवाल पूछिएगा।
जी, मैं ये पूछ रहा था कि म्यूचुअल फंड की, जैसे मेरे को 1 साल के करीब हो गया है, तो अभी म्यूचुअल फंड में मेरे को 17% मेरे को रिटर्न वो दे रहा है जी, प्रॉफिट दे रहा है, तो क्या उसमें बना रहूं या रीबैलेंसिंग भी कुछ करनी होती है, या कैसे करेंगी?
देवकांत जी, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपको पहले ही साल में आपने जब फंड का चुनाव किया, उसमें निवेश किया, तो आपको तुरंत ही एक अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिला, जिससे कि एक ऑटोमेटिकली आपका मोटिवेशन बूस्ट होएगा। मेरी सलाह ये रहेगी कि सिर्फ इस वजह से कि एक 17% का हो गया, आप उसको प्रॉफिट बुकिंग की अभी ना सोचिएगा। जहां तक की बात रहती है रीबैलेंसिंग की, रीबैलेंसिंग हम पूरे पोर्टफोलियो के आधार पर देखना बेहतर रहता है। तो आप ये देखिए कि जो आपका पैसा उसमें इक्विटी में है, वो पूरे पोर्टफोलियो का कितना पोर्शन है। अगर छोटा सा पोर्शन है तो जरूर ही उसको निकाल करके फिक्स्ड इनकम में डालने की जरूरत नहीं है। और प्रॉफिट बुकिंग की सलाह मैं आपको अभी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि देखिए हमारे को अक्सर ऐसा लगता है कि यार देखो इतना तो प्रॉफिट हो गया है तो इससे कि पहले वापस मार्केट जाए हम इसको थोड़ा सा नीचे निकाल लेते, लेकिन वहां पे एक जो रिस्क रहता है वो रिस्क ये रहता है कि हमको पता नहीं है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। मान लीजिए अभी 17% पे आप थोड़ा सा सोच के प्रॉफिट बुक कर लेते हो और कल को मार्केट और ऊपर जाता है तो आपको इस बात का निराशा होने लगेगी कि यार अगर मैं बना रहता तो इस पैसे को भी और ज्यादा रिटर्न्स मिल जाते तो मैंने क्यों ही थोड़े और पैसे निकाले, मैं उसको वहां पे रहने देता। तो एक इसी को सिस्टमैटिकली बैलेंस करने के लिए जरूरी रहता है कि आप अपने पोर्टफोलियो का असेट एलोकेशन देखिए। आमतौर पे अगर आप 5 साल से ज्यादा लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, 6-7 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका 70% पैसा इक्विटी में एक डाइवर्सिफाइड वे में रहेगा तो बेहतर रहता है, सिर्फ किसी एक फंड में नहीं बल्कि डाइवर्सिफाइड 2 से 3 फंड्स में और बाकी का फिक्स्ड इनकम में रख सकते हैं।
आकर, आई हैव बीन लिसनिंग वेरी केनली टू यू एंड यू हैव बीन यू नो एडवोकेटिंग ऑन डाइवर्सिफिकेशन इन द पोर्टफोलियो। सो इफ यू वर टू कीप द ग्लोबल कैनवस इन माइंड एंड इन टेकिंग क्यू फ्रॉम ग्लोबल वोलेटिलिटी इन टूडेज टाइम्स, does this strengthen the case for disciplined SIPs?
Yeah, definitely. So disciplined SIPs always helps you. So when you invest systematically in a disciplined manner, you automatically reduce the risk of the entering market at the wrong level, and you average the cost of purchase. And at the same time, if the volatility is through geopolitical reasons or any other reason, for whatever reason, so the whole idea behind SIP is that only to reduce the risk of the market volatility.
और अब चलिए कमोडिटीज के साप्ताहिक प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं। पहले प्रेशियस मेटल्स। भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में साप्ताहिक वृद्धि हुई। वैश्विक आर्थिक कारकों, सुरक्षित निवेश के रूप में मांग और अमरीकी फेडरल रिजर्व से कोई ठोस संकेतों की कमी के चलते कीमती धातुओं में खरीदारी बढ़ गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में इस सप्ताह मार्च अनुबंध वाली चांदी का वायदा मूल्य 3.5% बढ़कर 2,52,944 रुपये प्रति किलो दर्ज हुआ। अप्रैल बंद वाले सोने का वायदा मूल्य इसी दौरान 0.5% से अधिक बढ़कर 1,56,876 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। घरेलू एक्सचेंजों के वायदा बाजारों में अतिरिक्त मार्जिन हट जाने से बाजार में भागीदारी बढ़ गई और अंतर दिवसीय गतिविधि में वृद्धि हुई जिससे कीमतें बढ़ गई। एमसीएक्स और एनएसई ने 19 जनवरी से सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में गोल्ड फ्यूचर्स पर लगने वाला 3% और सिल्वर फ्यूचर्स पर लगने वाला 7% अतिरिक्त मार्जिन वापस ले लिया है। इस वर्ष कीमती धातुओं के मूल्यों में तीव्र और अत्यधिक बदलाव आने के बाद जोखिम प्रबंधन के उपाय के तौर पर एक्सचेंजों ने अतिरिक्त मार्जिन लागू कर दिए थे। सराफा बाजार में मूल्यों में गिरावट आने और बाजार की स्थिति में स्थिरता लौटने के बाद अतिरिक्त मार्जिन वापस लिए जाने से कारोबारियों की पूंजी की आवश्यकता कम हो गई है।
And let's see now what's the picture on the crude oil front. Global crude oil prices have registered solid weekly gains of almost 6%. Growing tensions between the United States and Iran pushed prices higher as traders priced in the possibility of a conflict that could disrupt supplies. Over the week, Brent crude futures climbed 5.9% and WTI crude futures jumped 5.7%. On Friday, Brent settled over 0.1% up at $71.76 per barrel, while the WTI also rose over 0.1% to end at $66.48 per barrel.
और अब चलते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट भविष्य में विश्व स्तर पर एआई की शक्ति के उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बताया कि समिट के लिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में कई देशों के नेता, उद्योगपति, नव प्रवर्तक और स्टार्टअप क्षेत्र से जुड़े लोग एकत्र हुए।
इस समिट में दुनिया को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली है। इस दौरान भारत ने 3 मेड इन इंडिया एआई मॉडल भी लॉन्च किए। यह अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी एआई समिट रही है।
डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसी घटनाएं अभी भी हो रही हैं और ये अक्षम्य है। उन्होंने श्रोताओं को बताया कि अपराधी फर्जी कॉल के अलावा फर्जी एसएमएस और फर्जी लिंक भेजते हैं। श्री मोदी ने सबसे आग्रह किया कि वे सतर्क रहें और ऐसी धोखाधड़ी का शिकार ना बने। उन्होंने बल दिया कि केवाईसी या पुनः केवाईसी सिर्फ बैंक शाखा, आधिकारिक ऐप और अधिकृत माध्यम से ही किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि वे किसी के साथ भी ओटीपी, आधार नंबर या बैंक खाते से जुड़ी जानकारी साझा ना करें।
Prime Minister Narendra Modi flagged off Meerut Metro and Namo Bharat train at Shatabdi Nagar Namo Bharat station in Meerut, Uttar Pradesh this afternoon. On the occasion, the Prime Minister dedicated to the nation entire 82 kilometers Delhi-Meerut Namo Bharat corridor. He inaugurated the remaining sections of India's first Namo Bharat regional rapid transit system, RRTS, with a design speed of 180 kilometers per hour. It connects major urban centers such as Sahibabad, Ghaziabad, Modinagar and Meerut with Delhi at a faster pace. The Prime Minister also flagged off Meerut Metro services between Meerut South and Modipuram, operating on the same infrastructure as Namo Bharat in a first-of-its-kind initiative in the country. This seamless integration of Namo Bharat and Meerut Metro on the same infrastructure ensures high-speed intercity travel and swift intra-city movement, setting a benchmark for integrated urban and regional transit in India.
श्रोता, हम आपको फिर बता दें कि आज का प्रोग्राम स्पेशली म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारी प्रदान करने के लिए है। फोन कॉल्स आपके सीधे प्रोग्राम में शामिल किए जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स और इससे जुड़े मुद्दों पर कोई भी जानकारी आप इस कार्यक्रम में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नंबर हम फिर बता देते हैं, 2331444, 2342105 और 2331046। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। और अब चलते हैं अगली खबर की ओर। भारत और ब्राजील ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर के पूर्व लक्ष्य से बढ़ाकर 30 अरब डॉलर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। विदेश मंत्रालय में सचिव पी कुमारन ने बताया कि ये निर्णय ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनेसियो लुला दा सिल्वा की भारत यात्रा के दौरान लिया गया। श्री कुमारन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ब्राजील के राष्ट्रपति डा सिल्वा का मानना था कि पूर्व लक्ष्य पर्याप्त नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बड़े लक्ष्य का प्रस्ताव रखा। प्रवक्ता ने बताया कि दोनों देश तेल, गैस और नवीकरणीय ऊर्जा, ब्राजील के उपग्रहों के प्रक्षेपण और संयुक्त रूप से उपग्रहों के निर्माण, जैव ईंधन और सतत विमानन ईंधन, कृषि, पशुधन तथा स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे, अगर हम इनकम के जो पोर्टफोलियो, इनकम को कैसे डिवाइड करें, उसमें आजकल एक थंब रूल आता है 50-30-20, उसके बारे में बहुत सुना जाता है, सो इसको आप जरा विस्तार से बता सकते हैं ताकि हमारे श्रोता, खासकर युवा श्रोता, इससे कुछ जानकारी ले सकें, कुछ सीख सकें।
जी बिल्कुल, देखिए जो 50-30-20 एक बजटिंग का थंब रूल है जो कि कहते हैं कि आपकी जो इनकम है उसका जो 50% है वो आप रखिए जो भी आपके एकदम नीड्स है, नीड्स यानी कि जो कि बहुत ही जरूरी एक्सपेंसेस है विच यू नो कैन नॉट बी अवॉइडेड, उसमें आपके ईएमआईज भी आते हैं और ग्रोसरीज भी आते हैं, सारी चीजें आती है। नेक्स्ट 30% जो आपकी इनकम का है वो कहते हैं कि वो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखिए, और जो 20% है वो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स के लिए रखिए। ये एक ब्रॉड थंब रूल है, बट मैं कहूँगा कि दिस इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। अगर किसी को शुरुआत करनी है अपनी इनकम के लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से कितना इन्वेस्ट करें या कैसे करें, उसके लिए बहुत एक अच्छा थंब रूल है। बट बाकी ये एक हर किसी के सर्कमस्टांसिस पे और सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कहीं पे किसी की जो नीड्स है, जैसे कि मान लीजिए एक कोई यंग अर्नर है वर्सेस कोई एक अर्नर है जिसके घर में ओल्ड पेरेंट्स है, कि उसके लिए नीड्स 50% से ज्यादा हो।
इस बीच हमारे एक कॉलर नवीन दिल्ली से जुड़ गए हैं। नवीन जी, अपना सवाल पूछे।
जी, मैं जी गुड इवनिंग एवरीवन. आई बीन इन्वेस्टेड फॉर अ व्हाइल एंड हैव अ पर्पस बट आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज अबाउट निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट एंड निफ्टी मोमेंटम. एनी गाइडेंस ऑन दैट प्लीज फॉर 7 to 8 years. थैंक यू.
Naveen, I would say Nifty 50 and Nifty Next 50 are basically the index funds which replicate both these indices. So Nifty 50 is essentially the top 50 stocks. Funds investing in Nifty 50, replicate the portfolio of this index and track the performance of the top 50 stocks. And when it comes to the Nifty Next 50, it is stock 51 to 100. When you talk about the momentum index, that is basically an index with some quant method applicable wherein, it's a smart index fund wherein with the help of some, quant method, they choose the stocks within the index which are likely on the momentum phase. But I would say, as you rightly mentioned, there is a lot of noise. So, be careful and you don't have to, invest just because something is popular or, someone in your friend circle has also invested or something is, making news every other day or everyone is talking about it. This is usually the FOMO factor, the fear of missing out. Don't get affected by that. Just sit calmly with a paper and pen. If you're investing for 7 to 8 years, your portfolio should be diversified enough for that. A very good flexi cap or a multi cap fund is perfect, not necessarily an index fund, and you can very well go with.
Akar, there's one more caller lined up from Mumbai this time. Ganpati ji, apna sawal puche.
Haan ji, good evening. My question is, between HDFC Balanced Advantage Fund and HDFC Flexi Cap Fund, what is the difference and which is better?
So both funds are different in terms of their investment mandate. The HDFC Flexi Cap Fund is essentially a pure equity fund which invests across large cap, mid cap and small cap stocks. These are basically the large size companies, medium size companies and the small size companies. Whereas the Balanced Advantage Fund is a hybrid fund. It invests in a mix of equity and debt. So, comparatively, the FlexiCap fund would be high on rewards, but slightly higher risk here. The hybrid fund would be lower on rewards, lower on risk. Here, the asset allocation would be managed dynamically basis the quant factors of the fund.
All right. Investors are likely to focus on several important domestic and geopolitical developments, including tariff-related moves in the United States, key domestic data, including gross domestic product numbers, and the monthly futures and options expiry for direction in the coming week. Benchmark domestic indices managed to close the week with modest gains, reflecting cautious optimism amid heightened uncertainty. Last week, the Sensex added 0.23%, while Nifty rose almost 0.4%. Moving ahead, market participants will closely monitor tensions in West Asia, along with progress on the India-US trade deal. In addition, India's third quarter GDP data based on the new series and industrial output data scheduled for release on Friday are expected to influence sentiment. In the US, all eyes will be on the fourth quarter earnings from artificial intelligence bellwether and major software players, given the AI fallout in the industry.
समय अनुरोध कर रहा है कि हम इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करें. आकार जी, आप आए और आपने हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
जी, धन्यवाद.
Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. US President Donald Trump announces hike in tariffs from 10 to 15% on all countries. Global crude oil prices surge almost 6% last week. And domestic investors to focus on Indian macroeconomic data, tariff-related developments and global triggers for cues next week. And that's it in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Good night.
Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.